آج ہے 30 نومبر دن سوموار. سواگت ہے آپ کا نمسکار بھارت میں. میں ہوں سشیلا سنگھ. پیرس میں جلوایو پریورتن پر ہونے والے سمیلن میں بھاگ لینے پہنچے پردھان منتری. فرانس نے سہمتی بننے پر جتائی امید تو نریندر مودی نے کہا
پورا وشو جلوایو پریورتن سے چنتت ہے. پرتھوی کا تاپمان اب بڑھنا نہیں چاہیے, یہ ہر کسی کی ذمہ داری بھی ہے, چنتا بھی ہے.
نیپال نے بھارتی سماچار چینلوں کے پرسارن پر لگایا پرتیبند تو بھارت نے مانا کہ دونوں دیشوں کے رشتوں میں آئی ہے تلخی.
جو بھی بھارت نیپال سمبندھ کو بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں وہ تو ذمہ داری تو ہمارے اوپر آئے گی ہی, تو اس میں کوئی دو رائے تو نہیں ہے, سمبندھ بگڑے ہیں.
جانیں گے کیوں ناراض ہیں پرشانت بھوشن جن لوک پال بل سے. ہوگی وسط اللہ خان کی ڈائری بھی, لیکن پہلے سن لیتے ہیں مکھیہ سماچار.
بی بی سی سماچار امل چودھری سے. پیرس میں گلوبل وارمنگ پر کئی دیشوں کے شیرش نیتا چرچا کریں گے. اس دوران دیشوں میں بڑھتے گرین ہاؤس گیسوں کے اتسرجن, گندی ہوتی ارجا کی ادھک کھپت اور پانی کی بچت جیسے کئی مدوں پر بات ہوگی. حالانکہ سمیلن کے ورودھ میں دنیا کے کئی حصوں میں ورودھ پردرشنوں کا دور بھی جاری ہے. نیپال میں کیبل ٹی وی آپریٹروں کا کہنا ہے کہ ان پر بھارتیہ ٹی وی چینل نہ دکھانے کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے. کیبل آپریٹروں کے مطابق یہ دباؤ ایک چھوٹی ماؤوادی پارٹی کی طرف سے ڈالا گیا ہے, جس نے رویوار کو نیپال میں راشٹر ویاپی ہڑتال کا آیوجن کیا. اس دوران ماؤوادی کاریکرتاؤں نے بھارت کے پرتی ورودھ جتانے کے لیے کئی واہنوں کو جلانے کے ساتھ اسکول اور ویاپارک پرتشٹھانوں کو بند کرایا. پردرشنکاریوں کا آروپ ہے کہ بھارت نیپال پر اپنے سمویدھان کو بدلنے کا دباؤ ڈال رہا ہے اور اس لیے اس نے نیپال کی ناکے بندی کر رکھی ہے. ترکی اور یورپی سنگھ کے بیچ شرنارتھیوں کی سنکھیا پر نینترن رکھنے کو لے کر سمجھوتا ہوا ہے. اس کے تحت ترکی کو ای یو کی طرف سے $3 ارب کی سہایتا راشی دی جائے گی. اس کے بدلے میں ترکی کو اپنی سیما سے جڑی کٹھور نیتیوں میں بدلاؤ کرنا ہوگا اور شرنارتھیوں کو پناہ دینی ہوگی. اس کے ساتھ ہی ترکی کو یورپی سنگھ میں دوبارہ شامل کیے جانے پر بھی چرچا کیے جانے کی سمبھاونا ہے. اس موقع پر پردھان منتری احمد داؤتوگلو نے کہا کہ یہ دن ترکی اور یورپی سنگھ کے رشتوں کے لیے ایتہاسک ہے. انہوں نے کہا
We are a European nation. The destiny of our continent belongs to us, to all of you.
ہم ایک یورپی دیش ہیں اور ہمارے مہادویپ کی تقدیر ہم سے ہے, آپ سب سے ہے. اور جہاں تک بات اس کے بھوشیہ کی ہے تو ترکی اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے. کیول شرنارتھیوں کے مدے پر ہی نہیں بلکہ کوئی بھی مشکل وقت پر ہم آپ سب کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم یورپی پریوار کا حصہ بننا چاہتے ہیں. ترکی کے پردھان منتری احمد داؤتوگلو. اس سال قریب 9 لاکھ شرنارتھی یورپ پہنچے ہیں. اس میں سے کئی سیریا, عراق اور افغانستان سے بھاگ کر ترکی میں بنے کیمپ میں رہ رہے ہیں. ترکی نے پچھلے منگلوار کو گرائے گئے روسی ویمان کے دوسرے پائلٹ کا شو روس کو لوٹا دیا ہے. اس سے پہلے ترکی کے پردھان منتری احمد داؤتوگلو نے کہا تھا کہ پائلٹ لیفٹیننٹ کرنل اولیگ پیشکوف کا شو سیریا سے برآمد کیا گیا ہے. ترکی کے لڑاکو ویمانوں نے روس کے ویمان کو سیریا سیما کے پاس گرایا تھا. روسی ویمان کے 2 پائلٹ پیراشوٹ کے سہارے ویمان سے کود پڑے تھے. ایران کی راجدھانی تہران میں کانسرٹ کو اس لیے رد کر دیا گیا کیونکہ مہیلا سنگیتکار اس میں گانا گا رہی تھیں. تہران سمفنی آرکیسٹرا کے کنڈکٹر علی راہبری نے کہا کہ پچھلے ہفتے وشو کشتی کلب چیمپئن شپ میں کانسرٹ کو شروع ہونے سے 15 منٹ پہلے رد کر دیا گیا تھا. راہبری نے کہا کہ انہیں بتایا گیا کہ کانسرٹ میں مہیلاؤں کے گانے کی اجازت نہیں ہے. اس کے بعد راہبری نے کہا کہ اس استھتی میں کانسرٹ ہی نہیں ہو پائے گا. بی بی سی سماچار.
آپ سن رہے ہیں نمسکار بھارت لائیو ریڈیو بی بی سی ہندی .com اور اپنے موبائل پر سشیلا سنگھ کے ساتھ. فرانس کی راجدھانی پیرس میں آج سے جلوایو پریورتن پر سنیکت راشٹر کے بینر تلے ہونے والے سمیلن سے پہلے وارتاکاروں نے بات چیت کی ہے. یہ وارتاکار جلوایو پریورتن پر ایک نئے ویشوک سمجھوتے کو انتم روپ دینے کی کوشش کریں گے. اس سمیلن کی شروعات کرتے ہوئے فرانس کے ودیش منتری نے کہا کہ انہیں یہ وشواس ہے کہ اس مدے پر ایک سہمتی بن پائے گی. اس بیچ دنیا بھر میں لوگوں نے گلوبل وارمنگ سے نپٹنے کے لیے ترنت قدم اٹھانے کی مانگ کرتے ہوئے ریلیاں نکالی. پورے بیورے کے ساتھ امل چودھری.
پیرس میں وایو پردوشن پر سمیلن میں پہنچنے سے پہلے امریکی راشٹرپتی باراک اوباما نے اپنے فیس بک پیج پر اسے لے کر سکاراتمکتا دکھائی. انہوں نے لکھا کہ امریکہ نے پچھلے 7 ورشوں میں اس دشا میں جو سفلتا حاصل کی ہے اسے لے کر وہ کافی آشوست ہیں. वहीं फ्रांस के विदेश मंत्री लॉरे फाबियास ने उम्मीद जताई कि ये सम्मेलन फायदेमंद साबित होगा और सभी देश एक निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। उन्होंने कहा,
Nous devons nous donner les moyens de revenir sur une trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre.
हमें उन तरीकों को खोजना होगा जिससे हम ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम कर सकें, जिससे प्रदूषण का स्तर कम हो। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हमें जलवायु परिवर्तन की मुश्किलों का सामना करना होगा। इसलिए ये हमें ही तय करना होगा कि हमें इस धरती पर किस तरह से रहना है और दूसरों की किस तरह से इस विषय पर मदद करनी है। फ्रांस के विदेश मंत्री लॉरे फाबियास के शब्द। वहीं दूसरी तरफ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस सम्मेलन में भाग लेने से पहले रविवार को मन की बात कार्यक्रम में इसी विषय पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि अगर प्रदूषण को बढ़ने से रोकना है तो ऊर्जा का कम से कम इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने कहा,
पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन से चिंतित है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, डगर डगर पर उसकी चर्चा भी है, चिंता भी है, और हर काम को अब करने से पहले एक मानक के रूप में इसको स्वीकृति मिलती जा रही है। पृथ्वी का तापमान अब बढ़ना नहीं चाहिए, ये हर किसी की जिम्मेवारी भी है, चिंता भी है।
हालांकि इस दौरान पेरिस में कई लोगों ने सम्मेलन का विरोध भी किया। सम्मेलन से पहले दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रविवार को रैलियां हुई। इन रैलियों में विश्व नेताओं से मांग की गई है कि वो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कदम उठाएं। इस मौके पर विश्व के नेताओं पर दबाव बनाने के लिए 2000 से ज्यादा आयोजन हो रहे हैं, जिसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से हुई। वहां करीब 10,000 लोगों ने रैली में हिस्सा लिया। पेरिस में एक जगह प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के बड़े समूह पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया। खबरों के मुताबिक कम से कम 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पेरिस में ऐसे ही एक प्रदर्शन में हिस्सा ले रही एमा रूबी कहती हैं,
Over 400,000 Parisians were planning to march to the city of Paris today.
पेरिस में मौजूद करीब 4,000 लोग आज प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पिछले दिनों हुए चरमपंथी हमले के चलते पुलिस ने इन प्रदर्शनों को करने की अनुमति नहीं दी। लेकिन इसके बावजूद लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। वो जानते हैं कि उनकी आवाज़ हर हाल में सुनी जाएगी। कई लोगों ने सरकार को अपने जूते भेजे हैं, जिसमें उन्होंने चिट्ठियां भर के भेजी हैं, तो कुछ ने जूतों में पौधे लगाकर भेजे हैं, और उन जूतों को यहाँ विरोध प्रदर्शन के प्रतीक के तौर पर रखा गया है। प्रदर्शन में हिस्सा ले रही एमा रूबी, पेरिस में होने वाले जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में दुनिया के 150 नेता भाग लेंगे, जिनमें अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन भी शामिल हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने जलवायु परिवर्तन को लेकर वैश्विक स्तर पर एक बाध्यकारी समझौते की अपील की है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा करना आसान नहीं होगा।
इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया भर के प्रमुख नेता पेरिस पहुंच चुके हैं। इसी महीने हुए चरमपंथी हमले को देखते हुए वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन इससे पहले भी होते रहे हैं, और इस बार के सम्मेलन में ऐसा क्या खास होने जा रहा है और भारत का क्या पक्ष रहेगा, इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने बात की पर्यावरण मामलों के जानकार बीबीसी संवाददाता नवीन खड़का से।
पिछले 20 साल से ये सम्मेलन होते आ रहे हैं, लेकिन इस बार ये क्या बता रहे हैं, जो आयोजक हैं और सहभागी देश हैं वो बता रहे हैं कि दुनिया के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की आवश्यकता है, जो जलवायु परिवर्तन की समस्या जो है उसको संबोधन करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की जरूरत है, और उसी संधि के लिए ये वहाँ ये बैठक कर रहे हैं और इसलिए इसको इतना महत्व दिया जाना है।
195 देशों में यदि प्रमुख बड़े खिलाड़ियों की बात करें तो वो देश कौन कौन से हैं?
इसकी दो खेमाएं हैं, एक जो है विकसित देश, तो इनमें से ज्यादातर पश्चिमा देश हैं और जैसे कि जापान वगैरह भी आते हैं। तो दूसरी खेमा जो है वो द्रुत गति में जो विकास कर रहे हैं, चीन, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इस तरह के देश। तो ये दो पक्ष हैं, दो जो खेमाएं हैं, इनके बीच जो खींचतानी है, खेल यही है। और खेल क्यों है? क्योंकि विकसित देश चाहते हैं कि ये जो द्रुत गति के विकास कर रहे देश हैं, ये भी कुछ कमिट करें कि इनकी जो कार्बन उत्सर्जन है उनमें कटौती करें, और द्रुत गति में विकास कर रहे देश कहते हैं कि कार्बन में कटौती करने की जिम्मेवारी तुम्हारी है, क्योंकि तुमने विकास कर लिए, अब बारी हमारी है, तो हमें विकास करने दो। तो बात वहीं अटकी हुई है, और देखना यह है कि इस जो ये मसला है इस पर कोई समझौता होता है या नहीं।
और इस सम्मेलन में भारत का पक्ष क्या है?
दो खेमा के बीच जो बात है, जो मुद्दा है, इसमें सबसे ज्यादा नजर जो है भारत में लगा हुआ है, क्योंकि चीन ने जो है भारत से कुछ ज्यादा कमिट कर दिया है, उसने बोल दिया है कि सन 2030 तक उसकी जो कार्बन उत्सर्जन वो पिक होगी, जबकि भारत में पिकिंग बोलते हैं उसे कि उच्चतम बिंदु जो होती है, जबकि भारत ने उस तरह की कोई प्रतिबद्धता नहीं जनाई है। तो इसीलिए क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश है, भारत का ये तर्क है कि हमारी जो इतनी सारी आबादी है और इतने उनमें से जनसंख्या की काफी बड़ी जो भाग है वो उनको बिजली तक नहीं मिली है, तो इसलिए हमें कार्बन उत्सर्जन कटौती करने की हमसे ज्यादा अपेक्षा मत करो, लेकिन हम जो कर सकेंगे जलवायु परिवर्तन के लिए हम ये करेंगे। देखना ये है कि बाकी के जो देश हैं वो भारत का इस तर्क वो सहमत होंगे या नहीं।
क्या भारत इस स्थिति में है कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसी तरह का दबाव डाल सके?
दूसरी खेमा में भारत दबाव तो नहीं डाल सकता, लेकिन समस्या क्या होगा, यूएन की जो ये सम्मेलन है इसकी एक सिद्धांत है कि अगर आप सबके सब सहमत नहीं है तो वहाँ कोई सहमति नहीं होती है। मेजोरिटी की जो सिद्धांत होता है बहुमत का वो वहाँ काम नहीं करता है, तो इसलिए भारत को मनवाने के लिए भी काफी कोशिशें होंगी। यही बात है कि कौन किसको मनाएगा।
आज तो सम्मेलन की शुरुआत हो रही है और ये 11 दिसंबर तक जारी रहेगा, आपको क्या लगता
है? देखिए ये मुश्किल है, जो संधि की बात कर रहे हैं कि अब ये हम करेंगे, और फिर दूसरा बात जो है ये बहुत सारे यहाँ लीगल इश्यूज भी हैं, जैसे कि अमेरिका ये नहीं मानता कि वहाँ कोई कानूनी हिसाब से बातें कर सहमति होगी, तरह की बातें हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखें तो हाल ही 170 से ज्यादा देश ने अपने क्लाइमेट प्लान वहाँ यूएन को सबमिट कर चुके हैं, उनमें वॉलंटरी है वैसे वो, तो वहाँ वो कमिट किए हैं कि कितने कार्बन उत्सर्जन करेंगे। अगर उसके हिसाब से देखें तो जो यूएन का कहना है कि लगभग 3 डिग्री जो औद्योगिक युग शुरू हुआ था 1750 को, उसके तुलना में 3 डिग्री पृथ्वी की औसत तापक्रम है वो बढ़ेगा, लेकिन वैज्ञानिकों का ये मानना है कि अगर आप 2 डिग्री क्रॉस करें तो काफी तबाही होगा। तो इसीलिए जो 2 डिग्री के लिए जितना कटौती करना है ना, झगड़ा हुई है, तो अब जो कॉन्सेप्ट ये है कि जो कार्बन स्पेस एटमॉस्फेयर में जो स्पेस है वो स्पेस की बजटिंग करना है, अब किसको कितना बजट मिलेगा, और भारत उस बजटिंग के लिए काफी लॉबी कर रहा है।
तो जलवायु परिवर्तन पर हो रहे सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे नरेंद्र मोदी, बीबीसी संवाददाता नवीन खड़का से बात कर रहे थे संदीप सोनी। अब रुक करते हैं भारत के पड़ोसी देश नेपाल का। नेपाल में केबल और टेलीविजन ऑपरेटर्स ने भारतीय न्यूज चैनलों का प्रसारण बंद कर दिया है और आने वाले दिनों में मनोरंजन चैनलों का प्रसारण भी बंद करने की चेतावनी दी है। क्या है ये पूरा मामला और इस मुद्दे पर नेपाल सरकार का क्या रुख है, जानने के लिए हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने ही बीबीसी नेपाली सेवा के हमारे सहयोगी फणिंदर दहल से बात की।
टेलीविजन ऑपरेटर ने बताया है कि उन्होंने भारतीय न्यूज चैनल को ब्लॉक कर दिया है। ये न्यूज चैनल में हिंदी लैंग्वेज का और इंग्लिश न्यूज चैनल जो इंडिया से आते हैं उन सब का प्रसारण पूर्ण रूप से बंद है, क्योंकि एक यहाँ पे एक कम्युनिस्ट पार्टी है जो माओवादी पार्टी से टूटकर बना है, उसका नेता विक्रम चंद जो रेडिकल लीडर है वो लीड कर रहे हैं, और उनका दल ने ये दबाव दिया है कि इंडिया नेपाल में ब्लॉकेड कर रहा है और विशेष अवस्था में भारतीय चैनल का प्रसारण बंद करना चाहिए और यहाँ पे एक राष्ट्रवादी आंदोलन करना चाहिए।
जिस दल का आप जिक्र कर रहे हैं जिसने ये दबाव बनाया है भारतीय चैनलों को बंद करने के लिए, क्या ये सरकार में शामिल है? क्या इसको जो बंद किया गया है ये सरकार की मर्जी मान के चले?
ये सरकार में शामिल नहीं है, ये तो अर्ध भूमिगत राजनीतिक दल है, माओवादी से फुटकर बने हैं, माओवादी के द्वंद्व काल में भी वो थे, माओवादी के कुछ लीडर है उसमें काफी रेडिकल टाइप के आदमी है और माओवादी के पूर्व लड़ाका है, और उन्होंने आइतवार नेपाल में बंद भी रखा था और गाड़ियों को तोड़फोड़ और आगजनी भी किया है एक दो स्थान में। और केबल ऑपरेटर का कहना है कि उनका प्रत्येक चैप्टर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चंद नेतृत्व के माओवादी ने वहाँ पर चिट्ठी लिखी है और कहा है कि अगर आप केबल चैनल बंद नहीं करेंगे तो आपका सुरक्षा में भी थ्रेट हो सकता है, वैसा धमकी दिया है। इसलिए वो कह रहे हैं कि जब तक अगर नेपाल सरकार नेपाल गवर्नमेंट सिक्योरिटी की प्रत्याभूति नहीं कर सकता है तो हम कोई भी भारतीय चैनल प्रसारण कर नहीं सकते। मैंने अभी अभी एक केबल टेलीविजन महासंघ के यहाँ के प्रेसिडेंट सुधीर पराजुली से बात किया था, वो कह रहे हैं कि अभी तो उन्होंने न्यूज चैनल ही रुकाए, प्रसारण रोके हैं, मगर उनको सब ये इंटरटेनमेंट चैनल का भी प्रसारण रोकने के लिए बहुत दबाव आ रहा है।
इसके पीछे वजह क्या है, ऐसा क्यों किया जा रहा है?
काफी लोग नाराज है नेपाल में जो अभी सिचुएशन है, यहाँ पे एक मानवीय संकट उत्पन्न हो रहा है और इंडिया डिनाई कर रहा है हमने ब्लॉकेट नहीं किया है वैसा कह रहा है, मगर यहाँ के काफी आदमी वो बात से सहमत नहीं है।
और आम लोग जो अपने घरों में भारतीय टेलीविजन चैनल्स देखते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है?
मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पीपल वो ये सपोर्ट कर रहे हैं टीवी चैनल को बंद करने के लिए, मगर पीपल का कोई रिएक्शन नहीं है, वो इंडिया से नाराज है और उसको ये जो रेडिकल माओवादी पार्टी है वो उसको अपने पक्ष में लाना चाहती है।
अच्छा, और इस पूरे मामले में जो नेपाल की सरकार है उसका क्या क्या कहना है?
सरकार के तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया है, ये पहली बार नहीं है कि नेपाल में भारतीय चैनल का प्रसारण रोक दिया गया है। इससे पहले भी जब नेपाल में ये कॉन्स्टिट्यूशन आया और ब्लॉकेट का जो जिक्र कर रहे हैं यहाँ के लोग वो शुरू हुआ, उस वक्त भी ऐसे ही एक स्प्लिंटर्ड कम्युनिस्ट पार्टी के दबाव की वजह से सब इंडियन चैनल के प्रसारण को रोक दिया गया था, मगर सरकार ने उस बार इंटरफेयर किया और केवल ऑपरेटरों को रिक्वेस्ट किया और उन्होंने फिर प्रसारण शुरू किया था।
तो नेपाल में भारत के न्यूज चैनलों के प्रसारण पर लगा बैन, ये थे फणिंदर दहल। भारत और नेपाल के बीच तनातनी कुछ महीनों से लगातार जारी है। नेपाल की ओर से भारत पर आरोप लगते रहे हैं कि उसने नेपाल में गैस, पेट्रोल और दवाओं जैसी जरूरी चीजों की आपूर्ति बंद कर रखी है, जिसकी वजह से नेपाल में जनजीवन पर बुरा असर पड़ रहा है और रोजमर्रा की चीजों की भारी कमी हो गई है। उधर भारत नेपाल के इन आरोपों को खारिज करता रहा है। इस मुद्दे पर बीबीसी नेपाली सेवा के महेश आचार्य ने काठमांडू में भारत के राजदूत रंजीत रे से बात की।
भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के भ्रमण हुआ था गत साल, उसके बाद नेपाल और भारत के संबंध बहुत अच्छा रहा है और जब ये पिछले एपिसोड आया है उसके बाद संबंध बिगड़ने की सब मानते हैं। तो आप किसी हिसाब से मानते हैं कि एक भारत के प्रमुख प्रतिनिधि के हिसाब से इस संबंध जो बिगड़ गया है इसमें आप किसी तरह से जिम्मेवार हैं?
जो भी भारत नेपाल संबंध को बढ़ाने में लगे हुए हैं वो तो जिम्मेवारी तो हमारे ऊपर आएगी ही, तो इसमें कोई दो राय तो नहीं है। संबंध बिगड़े हैं, वजह क्या है ये देखना होगा और सुधार लाना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि दोनों पक्षों को इसमें काम करना पड़ेगा।
आपने वजह की बात कही लेकिन कई आलोचक ये कहते हैं कि भारत ने नेपाल के अंदरूनी मामला में हस्तक्षेप की है, जैसे कि एक पॉलिटिकली एक सेक्शन को सपोर्ट करके लार्जर सेक्शन को एंटेगनाइज किया है, ऐसा आलोचक का मानना है।
देखिए, इसमें मैं ये साफ कहना चाहता हूँ कि भारत की नीति जो है वो पूरे समग्र नेपाल के लिए है और भारत की नीति किसी एक समुदाय के लिए या किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं है। और हम चाहते हैं कि नेपाल में स्थिरता और स्थायित्व आए और सब ये समझते थे कि जो नया संविधान बन रहा है उसमें सबकी बात रखी जाएगी, तो यही हमारा एक मैसेज था और ये हस्तक्षेप नहीं था, ये एक मित्राना हमारा रिक्वेस्ट थी, एडवाइस था।
अब जैसे कि ये फैक्ट भी हम अस्वीकार नहीं कर सकते कि जो नेपाल के न्यूली प्रमोलगेटेड कॉन्स्टिट्यूशन है, नए संविधान है, वो 85% पार्टीज के समर्थन के हिसाब से ये पारित हुआ है, उसको तो अस्वीकार नहीं कर सकते।
हाँ, कोई अस्वीकार नहीं कर सकता, ये बिल्कुल सही बात है, बट प्रॉब्लम क्या है कि इसके बावजूद इतनी दिक्कत आ रही है देश में, तो ये नंबर्स गेम केवल नहीं है। हमारा यही मानना था कि आप नंबर्स गेम पे मत जाइए, जो भावनाएं हैं लोगों की, जो समुदायों की, उनको आप समेटिए। अगर उनको आप नहीं समेटोगे तो नंबर से संविधान तो आ जाएगा पर प्रॉब्लम का समाधान नहीं होगा।
लेकिन वो नंबर तो चुनाव से ही आया है फिर?
नहीं तो देखिए ना, तो ये तो आप बात सही कह रहे हैं, तो फिर समस्या इतनी गंभीर क्यों बन गई नेपाल में?
और दूसरी बात, ये जो नाकाबंदी के विषय में भारत ये कह रहा है कि ये नाकाबंदी नहीं है, नेपाल के पक्ष में जो कुछ सेक्शन विरोध कर रहे हैं उसके कारण नाकाबंदी हो रही है, लेकिन अगर आप देखें तो एक प्रमुख नाका बीरगंज रक्षोल उसमें अवरोध दिखा जा रहा है, लेकिन और जो नाकाएं हैं उसमें कोई आंदोलन नहीं है या विरोध नहीं है, फिर भी वहां से जो नियमित तौर से आना चाहिए था वो ट्रक्स या जो सामान है, कार्गो है, वो नहीं आ रहा है, क्यों?
देखिए, दो तिहाई जो आपका ट्रेड है वो रक्सौल बीरगंज नाका से आता है और आपका 100% जो थर्ड कंट्री ट्रेड है कलकत्ते से कंटेनर्स में वो बीरगंज आता है, तो जब ये रक्सौल बीरगंज का नाका बंद होता है तो बाकी जगह से तो एक तिहाई ट्रेड आता है, रफली 30% या 35%, तो वही आज की अवस्था है। दूसरा, रक्सौल नाका तो कई दिनों से बंद है और नाकाओं पे कभी कभी खुल जाते हैं, कभी कभी दिक्कत हो जाती, तो तनाव आ जाता है, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जहां तक हो सके इसकी पूर्ति की जाए दूसरे नाकाओं से, पर इतना आसान ये काम नहीं है।
और पिछले ये एपिसोड को ही लेकर कई भारतीय कमेंटेटर ने ये कहा है कि जो मोदी के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी था वो इस एपिसोड के बाद नेपाल में कम्प्लीटली फेल हो गया है, क्या आप मानते हैं?
नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है और वो इसलिए है क्योंकि भारत का विकास जो है उस गति से नहीं हो पाएगा अगर भारत के नेबरहुड में अस्थिरता अशांति होगी। हमें लगता है कि ये कुछ अंदरूनी कारण हैं जिनकी वजह से अस्थिरता है और वो कारण का जब समाधान हो जाएगा मुझे लगता है अस्थिरता समाप्त हो जाएगी, भारत नेपाल संबंध बहुत प्रगाढ़ और आगे अच्छी तरह बढ़ेंगे।
तो नेपाल में भारत के राजदूत ने जताई उम्मीद सुधरेंगे दोनों देशों के रिश्ते। राजदूत रंजीत रे से बात कर रहे थे बीबीसी नेपाली सेवा के महेश आचार्य। भारत की संसद में आज असहिष्णुता के मुद्दे पर चर्चा होनी है जहां विपक्षी दल नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश करेंगे। उधर दिल्ली विधानसभा में भी आज ही जन लोकपाल बिल पेश किया जाना है जिसे लेकर कभी आम आदमी पार्टी में खास रहे वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने प्रशांत भूषण से पूछा कि उनकी नाराजगी किस बात को लेकर है।
हम लोगों ने लोकपाल का एक बिल बनाया, उसके कई ड्राफ्ट्स बने, आखिर में ड्राफ्ट 2.3 सब में ये था कि चयन समिति जो होगी लोकपाल का चयन करने के लिए उसमें सिर्फ एक जना सरकार का होगा और सिर्फ दो पॉलिटिशियंस होंगे और कम से कम 5 अन्य स्वतंत्र लोग होंगे। अब जो ये बिल लाए हैं उसमें 4 में से 3 लोग पॉलिटिशियंस हैं और उसमें से 2 सरकार के हैं, यानी चीफ मिनिस्टर, स्पीकर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और एक चीफ जस्टिस है चयन समिति में। तो सरकार की अनुमति के बगैर कोई लोकपाल बना नहीं सकते।
आप कह रहे हैं कि लोकपाल को बनाने की प्रक्रिया बदल गई है, नए वाले में अलग है और पुराने वाले में अलग थी, और लोकपाल को हटाने की जो प्रक्रिया होती है, जो तरीके होते हैं, उसको लेकर भी किसी तरह का बदलाव हुआ है क्या नए जन लोकपाल बिल में?
लोकपाल को हटाने के लिए हम लोगों ने ये बोला था कि सरकार और संसद नहीं हटा सकती जब तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस नतीजे पर ना पहुंचे पूरा केस चलाने के बाद कि इसने कोई सीरियस मिसकंडक्ट किया है, तभी लोकपाल को हटाया जा सकता है। ये जो अब बिल लाए हैं उसमें दिल्ली विधानसभा 2/3 बहुमत से लोकपाल को हटा सकती है।
लोकपाल किस तरह से किसी मामले की जांच करेगा? क्या उसकी अपनी एक अलग स्वतंत्र पृथक जांच एजेंसी होगी?
सारे बिलों में हम लोगों ने ये किया था कि लोकपाल अपनी स्वतंत्र जांच एजेंसी अपने अंदर बनाएगा और सीबीआई को लोकपाल के नीचे लाया जाएगा। इस बिल में ये है कि लोकपाल जांच सरकारी संस्था से कराएगा, कोई भी सरकारी जांच एजेंसी से। तो पूरी तरह से जो मूल आधार था स्वतंत्र लोकपाल का उसको बिल्कुल दरकिनार करके उसके बिल्कुल खिलाफ ये 2015 का जन लोकपाल बिल बनाया गया है जो कि कैबिनेट से पास कराया गया।
क्या केंद्रीय मंत्रियों से संबंधित मामलों की जांच पड़ताल करने के तौर तरीके या उसका अधिकार होगा या नहीं होगा दिल्ली के इस लोकपाल को, इस बारे में कुछ कहीं कुछ फर्क आया है नए पुराने जन लोकपाल बिल में?
देखिए, इन्होंने तो ये प्लान बनाया था, उसमें एक और क्लॉज डाल दिया था कि केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय सरकार के ऊपर भी जांच ये दिल्ली का लोकपाल करेगा, क्योंकि दिल्ली में जो भी भ्रष्टाचार होता है उस सब की जांच दिल्ली का लोकपाल करेगा। जबकि हमारे सारे बिल्स में ये था कि केंद्र के मंत्री और केंद्र के अधिकारियों की जांच केंद्र का लोकपाल और राज्य के मंत्री और अधिकारियों की जांच राज्य का लोकपाल। अब ये क्लॉज इन्होंने जानबूझकर इसलिए डाला क्योंकि इनको पता है कि ये दिल्ली का कोई भी कानून सेंट्रल गवर्नमेंट से जब तक अप्रूव ना हो जाए तब तक पास नहीं हो सकता। इनको पता है कि ये केंद्र सरकार कभी अप्रूव नहीं करेगी और इसलिए ये लोग ये क्लेम करते हैं कि भाई हमने तो पास कर दिया जी, केंद्र सरकार नहीं पास होने दे रही जी, हम क्या करें जी। जब हमने ये पूरा उजागर किया तो इन्होंने ये बयान दिया कि नहीं जी, 2014 में जो हम बिल लाए थे वो भी यही था, उस समय प्रशांत भूषण को इससे आपत्ति नहीं थी तो अब क्यों है। फिर हमने जब 2014 का बिल देखा तो देखा कि वो भी बिल्कुल फर्क था, जो आज जो बिल लाए हैं उससे बिल्कुल फर्क था।
तो जन लोकपाल बिल से खासे नाराज हैं प्रशांत भूषण। उधर आम आदमी पार्टी ने प्रशांत भूषण के इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है और कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार विधानसभा में बिल पेश करने से पहले आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहेगी। और आज सोमवार है और समय है वसुतुल्लाह खान की डायरी का, ये सुनते हैं इस बार क्या है इस डायरी में।
मेरे घर में आज भी मिट्टी के 3 बंदर ऊंची जगह पे पड़े पड़े देखते रहते हैं। जब बच्चा था तो माँ कहती थी किसी में बुराई मत देखो, उसकी अच्छाई पे ध्यान दो। बाप समझाता था, अपने मुंह से किसी के लिए भी बुरी बात मत निकालना और दूसरा निकाले तो उसे भी रोक देना। मेरा गुरु बताता था, ना बुरी बात सुनो ना बुरी बात सुनाओ। जब मैं ये तीनों बातें गिरह से बांधे बांधे बड़ा हो गया तो अब मेरी माँ कहती है, बुराई देखो तो चुप रहो। बाप कहता है, कोई बात मुंह से मत निकालो, जाने किसे बुरी लग जाए। गुरु कहता है, बुरी बात कान में पड़े तो सुनिए न सुनी कर दो। और मेरा राष्ट्र, जिसके बारे में मुझे बचपन से बताया गया कि वो पिता माता और गुरु सभी कुछ है, वही राष्ट्र मुझसे कहता है कि कभी ये मत सुनो कि हम बुरे हैं, बस ये कहो कि वो बुरे हैं। कभी अपनी बुराई मत देखना, हमेशा ये देखना कि सामने वाला कितना घटिया है। कभी अपने बारे में बुरा मत सोचना, हमेशा सामने वाले के लिए बुरा सोचना। हम बुरे हो ही नहीं सकते, हम बुरी बात कर ही नहीं सकते, हम अपने लिए बुरी बात सुन ही नहीं सकते। यही है आज का संविधान, कानून और नियम। और जब बस हम ही अच्छे और सच्चे हैं तो अब हमारा फर्ज है कि बुरों को सीधा करें, भले शब्दों के तीर से, डंडे से या खंजर से। अच्छाई फैलाने के लिए गालम गलोच, पिटाई और मार डालना समेत सब कुछ ठीक है। बुराई में से अच्छाई का घी सीधी उंगलियों ना निकले तो टेढ़ी उंगली से निकाल लो। मकसद तो अच्छाई फैलाना है भले कैसे भी, क्योंकि अब हम तय करेंगे कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या, सिर्फ अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए भी। तर्क, दलील, मगर ये तो कमजोर का हथियार है, ताकतवर का तर्क से क्या लेना देना। कानून, हाँ कानून अच्छी चीज है अगर हम बनाएं और तुम पे लागू हो। मैं आज जिस राष्ट्र के जिस घर में रहता हूं वहां अगर यही नियम फलता फूलता रहा तो आखिर में सिर्फ ऐसा राष्ट्र बचेगा जहां शेर और बकरी एक घाट पानी पिएंगे, क्योंकि प्यासी बकरी का शिकार बुरी बात होती है। और फिर मेरे घर के सन्नाटे में भी बस मिट्टी के बने हुए तीन बुद्धिमान वानर ही रह जाएंगे, क्योंकि शेर मिट्टी नहीं खाता। ना देखो ना सुनो ना कहो, बस मिट्टी के बंदर बन जाओ, ताकि संसार शांत हो जाए, कब्रिस्तान की तरह, मरघट की तरह। तो ये है आइडियल राष्ट्र की नवीन छवि। अपनी तसल्ली के लिए जो भी नाम रख लो, बांग्लादेश, चाइना, ईरान, अमेरिका, सऊदी अरब, पाकिस्तान, भारत, कुछ भी।
आपको पाकिस्तान से वसुतुल्लाह खान की डायरी कैसी लगी हमें ज़रूर लिखेगा। और अब समय समाचार पत्रों की समीक्षा का, और अमल मुस्कुरा रहे हैं समाचार पत्रों के साथ। अमल, क्या कहते हैं आज के अखबार?
जी, आज के अखबारों में मुख्य रूप से जो खबरें सुर्खियां बनी हैं उनमें नेपाल में 7 घंटे तक 13 भारतीय जवानों के बंधक बने रहे, और पाकिस्तान के जासूसों की गिरफ्तारी, और पेरिस में जलवायु परिवर्तन पर होने वाला जो सम्मेलन है वो शामिल है। इसमें हिंदुस्तान, अमर उजाला, जनसत्ता, टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक भास्कर समेत सभी अखबारों में इन्हें प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। सैनिकों को बंधक बनाए जाने वाली खबर में 2 भारतीय सैनिक तस्करों का पीछा करते हुए नेपाल में घुस गए थे, जिसके बाद वहां की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें जब 11 सैनिक छुड़ाने पहुंचे तो उनको भी वहां की पुलिस ने पकड़ लिया। बाद में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के 7 घंटे बाद सभी सैनिकों को रिहा किया गया। वहीं पाकिस्तानी जासूस वाली खबर में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने पाक के 2 जासूसों समेत बीएसएफ के 1 जवान को गिरफ्तार किया है। दोनों जासूस बीएसएफ के जवान की मदद से मिले दस्तावेज आईएसआई तक पहुंचाते थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम से जुड़ी खबर भी प्रकाशित की गई है। इस पर हिंदुस्तान का शीर्षक है, अवशेष जलाना धरती का चमड़ा जलाने जैसा। इसमें मोदी ने कहा कि फसल के अवशेष बहुत कीमती होते हैं और इन्हें जलाने के बजाय जैविक खाद बनाने में इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं जनसत्ता ने मोदी के बयान से ही हेडिंग बनाई है, जिसमें अखबार लिखता है कि राष्ट्रीय एकता के लिए भारत श्रेष्ठ भारत।
समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमल। और अब सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। पेरिस में ग्लोबल वार्मिंग पर कई देशों के शीर्ष नेता चर्चा करेंगे। इस दौरान देशों में बढ़ते ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन, गंदी होती नदियां, ऊर्जा की अधिक खपत और पानी की बचत जैसे कई मुद्दों पर बात होगी। नेपाल में केबल टीवी ऑपरेटरों का कहना है कि उन पर भारतीय टीवी चैनल ना दिखाने का दबाव डाला जा रहा है। केबल ऑपरेटरों के मुताबिक ये दबाव एक छोटे माओवादी पार्टी की तरफ से डाला गया है। तुर्की और यूरोपीय संघ के बीच शरणार्थियों की संख्या पर नियंत्रण रखने को लेकर समझौता हुआ है। इसके तहत तुर्की को ईयू की तरफ से $3 अरब की सहायता राशि दी जाएगी। तुर्की ने पिछले मंगलवार को गिराए गए रूसी विमान के दूसरे पायलट का शव रूस को सौंप दिया है। इससे पहले तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दोगुतोग्लू ने कहा था कि पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल ओलेग पेशकोव का शव सीरिया से बरामद किया गया है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे अमल चौधरी। इसी के साथ नमस्कार भारत में बस इतना ही। आपसे 8 बजे विश्व भारती में फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।